आज है 27 अक्टूबर दिन गुरुवार। स्वागत है आपका दिन भर में। मैं हूँ सुशीला सिंह। भारत ने पाकिस्तान उच्चायोग के एक अधिकारी पर लगाया जासूसी करने का आरोप।
आज सुबह विदेश सचिव ने पाकिस्तान के उच्चायुक्त श्री अब्दुल बासित को बुलाया और उन्हें बताया कि भारत ने पाकिस्तान उच्चायोग के एक अधिकारी को जासूसी करते हुए पकड़ा है और उन्हें पर्सोना नॉन ग्राटा यानी अस्वीकार्य व्यक्ति घोषित किया जा रहा है।
बिहार के जहानाबाद अदालत ने सिनारी जनसंहार मामले में 15 लोगों को दोषी पाया।
ट्रायल के दौरान आज फैसला का दिन निर्धारित था। आज 38 में से 23 लोगों को रिहा किया गया। सजा के बिंदु पर 15/11/2016 को सजा के बिंदु पर।
अमेरिका में बिना कागजात के प्रवेश करने वाला प्रवासियों के विवादास्पद मुद्दे पर करेंगे चर्चा। होंगी आपकी चिट्ठियां भी, लेकिन पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार तृप्ति श्रीवास्तव से। रक्षा मामलों से संबंधित कथित दस्तावेजों के साथ दिल्ली से हिरासत में लिए गए पाकिस्तान उच्चायोग के एक कर्मचारी को डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी के तहत छोड़ दिया गया है। पाकिस्तान उच्चायोग ने इस मामले में भारत सरकार से कड़ा विरोध जताया है और भारत की ओर से लगाए गए सभी आरोपों का खंडन किया है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि इस व्यक्ति के पास कथित तौर पर सीमा सुरक्षा बल की तैनाती से जुड़े दस्तावेज थे। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि गृहयुद्ध छिड़ने के 5 सालों में इस बार सीरिया के लोगों के लिए आने वाली सर्दियां बेहद मुश्किल हो सकती हैं। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय सहायता के प्रमुख यान एग्लैंड ने कहा कि सर्दियां आने से पहले ही सभी विरोधी पक्षों से अपील है कि वो मानवीय सहायता में मदद करें। एक कटु लड़ाई और भी कड़वी हो गई है। एक क्रूर युद्ध अधिक क्रूर हो गया है। हम सभी पार्टियों और उनके प्रायोजकों से मानवीय सहायता का काम करने के लिए मदद की ज़रूरत की अपील करते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो इस बार की सर्दियां भयानक होगी। ये संघर्ष शुरू होने के बाद की 6 सर्दियों में सबसे ख़राब सर्दी का मौसम होगा। ये थे यान एग्लैंड के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर व्यवसाय में घाटे के चलते 9% यानी करीब 300 कर्मचारियों की छटनी करने जा रहा है। ट्विटर को अपने प्रतिद्वंदी फेसबुक, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से संघर्ष करना पड़ रहा है। ट्विटर को उम्मीद है कि वो अगले साल मुनाफा कमाएगी। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि गंभीर सूखे के चलते दक्षिणी मेडागास्कर में करीब 15 लाख लोग भुखमरी का सामना कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एजेंसी का कहना है कि एंड्रॉय प्रांत में मक्के की फसल 80% से भी कम हुई है। कसावा सहित कई और खाने की फसलों में भी कमी आई है। लोग बीज खाकर और अपने खेती के औजार व जानवर बेचकर गुजारा कर रहे हैं। बेल्जियम का कहना है कि वो कनाडा के साथ मुक्त व्यापार समझौते के हल तक पहुंच गया है। इस समझौते में 7 साल लगे। बेल्जियम को छोड़कर बाकी सभी यूरोपीय यूनियन के देशों ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। बेल्जियम के फ्रेंच बहुल प्रांत ने इसका विरोध किया था। बेल्जियम के प्रधानमंत्री चार्ल्स माइकल ने कहा है कि देश के क्षेत्रीय और भाषीय समुदाय संशोधित समझौते पर राजी हो गए हैं। कनाडा ने इसे एक सकारात्मक कदम बताया है। हालांकि समझौते में किए गए बदलावों को यूरोपीय यूनियन के बाकी 27 सदस्यों के सामने रखा जाएगा। अमरीकी सेना का कहना है कि उत्तरी इराक में चरमपंथी गुट आईएस के खिलाफ चल रही अमरीका की कार्रवाई में करीब 800 चरमपंथी मारे गए हैं। 11 दिन पहले शुरू किए गए इस अभियान का मकसद मोसुल को आईएस के कब्जे से छुड़वाना है। मोसुल इस्लामी चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट का गढ़ माना जाता है और अमरीकी गठबंधन इस चढ़ाई में इराकी सरकार और कुर्द सैनिकों का समर्थन कर रही है। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं दिनभर लाइव रेडियो bbchindi.com और अपने मोबाइल पर सुशीला सिंह के साथ। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने आज पत्रकारों को जानकारी दी कि भारत ने पाकिस्तान उच्चायोग के एक अधिकारी को जासूसी करते हुए पकड़ा है। विकास स्वरूप का कहना था कि संबंध में जानकारी देने के लिए पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित को बुलाया गया था। विकास स्वरूप ने कहा कि इस व्यक्ति को अस्वीकार्य व्यक्ति घोषित किया गया है और इस व्यक्ति का नाम महमूद अख्तर है। उसे कल दिल्ली पुलिस ने पकड़ा था। क्या है ये पूरा मामला जानने के लिए मैंने बीबीसी संवाददाता सलमान रावी से बात की।
भारत का दावा है कि उसने एक बहुत बड़े जासूसी रैकेट का पर्दाफाश किया है, जिसमें एक अधिकारी जो पाकिस्तान उच्चायोग में तैनात है और 2 भारतीय जो काम कर रहे थे उनके लिए, इन 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और गिरफ्तार करने के बाद वैसे तो हिरासत में कहा गया कि हिरासत में लिया गया, चूंकि राजनयिक हैं, और कुछ देर के बाद उन्हें छोड़ भी दिया गया। लेकिन बाकी के जो दो लोग गिरफ्तार किए गए उनको अभी भी हिरासत में रखकर और उनसे पूछताछ की जा रही है। इस संबंध में अब आगे भारत और पाकिस्तान के बीच में जो वाक्य युद्ध जिसको कहते हैं वो छिड़ गया। भारत सरकार की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें प्रवक्ता विदेश मंत्रालय के विकास स्वरूप उन्होंने कहा,
आज सुबह विदेश सचिव ने पाकिस्तान के उच्चायुक्त श्री अब्दुल बासित को बुलाया और उन्हें बताया कि भारत ने पाकिस्तान उच्चायोग के एक अधिकारी को जासूसी करते हुए पकड़ा है और उन्हें पर्सोना नॉन ग्राटा यानी अस्वीकार्य व्यक्ति घोषित किया जा रहा है। सेना और अर्धसैनिक बलों के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की जासूसी के संबंध में पिछले 6 महीनों से प्राप्त खुफिया जानकारी के बाद श्री महमूद अख्तर को दिल्ली पुलिस ने कल मध्याह्न पूर्व उस समय पकड़ा जब वो भारत की सुरक्षा से संबंधित संवेदनशील दस्तावेज 2 व्यक्तियों से प्राप्त कर रहे थे। पहले तो श्री महमूद अख्तर ने भारतीय नागरिक होने का छल करने की कोशिश की और एक फेक आधार कार्ड भी दिखाया।
भारत में काम कर रहे थे पाकिस्तान उच्चायोग में, इनके बारे में विकास स्वरूप का कहना था कि ये जो 40वीं बलूच रेजिमेंट है उसमें ये काम करते थे हवलदार के पद पर और 3 साल पहले ISI ने उन्हें रिक्रूट करके ट्रेनिंग दी और उसके बाद फिर यहाँ पर वीजा सेक्शन में उन्हें तैनात किया गया।
उन्होंने बताया कि 1997 में वो पाकिस्तानी सेना के बलूच रेजिमेंट में भर्ती हुए थे और 2013 में उन्हें प्रतिनियुक्ति के आधार पर इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI में तैनात किया गया। सितंबर 2013 में उन्हें पाकिस्तान उच्चायोग में नियुक्त किया गया जहाँ वो वर्तमान में श्री फारूक हबीब काउंसलर ट्रेड के सहायक के रूप में कार्य कर रहे हैं। राजनयिक मिशनों के सदस्यों के प्रति व्यवहार से स्वीकार्य मानकों के हिसाब से उनके शिष्टाचारपूर्ण व्यवहार किया गया और उसके शीघ्र बाद ही उन्हें पाकिस्तान उच्चायोग के एक राजनयिक के हवाले कर दिया गया और उन्हें बता दिया गया कि श्री महमूद अख्तर और उनका परिवार 29 अक्टूबर यानी कि 48 घंटों के अंतर्गत पाकिस्तान अवश्य वापस लौट जाए।
और इन जो दो लोगों की गिरफ्तारी हुई है इनके बारे में कोई जानकारी दी गई है?
दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर हैं रविंद्र यादव, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये बताया कि ये गिरफ्तारियां दरअसल चिड़ियाघर के पास से हुई हैं जहां पर मौलाना रमज़ान और सुभाष जांजगीड़ ये जो दो लोग थे ये नक्शे सप्लाई कर रहे थे बॉर्डर के इलाकों के पाकिस्तान उच्चायोग के इस अधिकारी को, ये पुलिस का दावा है। और ये दोनों ही राजस्थान के नागनौर के रहने वाले हैं। सुभाष के बारे में कहा जाता है कि वो एक किराने की दुकान चलाता है और काफ़ी कर्ज में डूबा हुआ था और रमज़ान जो हैं वो मदरसे में पढ़ाने का काम करते हैं। ये भी दिल्ली पुलिस का कहना है कि जो लोग वीज़ा लेने आते हैं पाकिस्तान की एम्बेसी में, जो गरीब लोग हैं जो पैसे का लालच देके वीज़ा का वो करके वो किसी तरह से फांसते हैं लोगों को और तब उनसे जासूसी करवाते हैं, ये दावा है भारत सरकार का।
जी, और क्या पाकिस्तान की इस पूरे मामले पर कोई प्रतिक्रिया आई है?
पाकिस्तान ने बहुत प्रोटेस्ट किया है जो भी कार्रवाई हुई है उसका, और पाकिस्तान हाई कमीशन से जो आधिकारिक बयान आया है उसमें कहा गया है कि ये जो कुछ हुआ है वो उल्लंघन है 1961 के वियना समझौते का और भारत सरकार से उन्होंने कहा है कि इस तरह का हरासमेंट का शब्द का इस्तेमाल किया है कि वो नहीं होना चाहिए कर्मचारी जो यहाँ काम कर रहे हैं उनके साथ।
भारत ने पाकिस्तान उच्चायोग के एक अधिकारी को जासूसी करते पकड़ने का किया दावा, तो पाकिस्तान ने किया इसका विरोध, कहा भारत ना करे पाकिस्तान के अधिकारियों का उत्पीड़न। ये थे सलमान रावी। अब रुक करते हैं बिहार का। बिहार में 17 साल पहले हुए सिनारी जनसंहार में 15 लोगों को दोषी पाया गया है और 23 को बरी कर दिया गया है। मार्च 1999 में हुए सिनारी जनसंहार में जहानाबाद न्यायालय ने आज फैसला सुनाया। सिनारी गांव में वो घटना तब हुई जब शाम के समय तथाकथित अगड़ी जाति 34 लोगों की गला रेत कर उन्होंने हत्या कर दी थी। पूरे ब्यौरे के साथ पटना से मनीष शांडिल्य।
18 मार्च 1999 की रात हुए इस नरसंहार में अरवल जिले के सिनारी गांव के एक खास अगड़ी जाति के 34 लोगों की हत्या कर दी गई थी। घटना के बारे में बताया जाता है कि प्रतिबंधित संगठन माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर यानी कि MCC के सैकड़ों लोगों ने घटना की रात सिनारी गांव की घेराबंदी कर ली थी। इसके बाद चुन चुनकर एक जाति विशेष के पुरुषों को घरों से निकालकर गांव में ही स्थित ठाकुरबाड़ी मंदिर के पास जमा किया गया। फिर रात 7:30 से 10 बजे के बीच 34 लोगों की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। इस मामले के करीब 17 साल बाद आज दोपहर करीब 2:30 बजे खचाखच भरे अदालत में तृतीय अपर और जिला सत्र न्यायाधीश रंजीत कुमार सिंह ने फैसला सुनाया। फैसले के बारे में लोक अभियोजक सुरेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया,
ट्रायल के दौरान आज फैसला का दिन निर्धारित था। आज 38 में से 23 लोगों को रिहा किया गया। सजा 148, 302 अवलेक 149, 307 रेड विथ 149 IPC एवं 3x4 एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट के तहत दोषी पाया गया। सजा के बिंदु पर 15/11/2016 को सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई।
अरवल जिले के करपी थाने में घटना के अगले दिन यानी कि 19 मार्च 1999 को इस मामले में FIR दर्ज हुई थी। मामले की सूचक चिंतामणि देवी थीं, जिनकी कुछ सालों पहले मौत हो चुकी है। चिंतामणि के परिवार से दो लोग इस घटना में मारे गए थे। इस मामले में 1999 से 2000 के बीच कुल 4 चार्जशीट दाखिल किए गए। आज जिस मामले में फैसला आया है, उस मामले में कुल 45 अभियुक्त बनाए गए थे, जिनमें से दो की मौत सुनवाई के दौरान हो गई थी, जबकि 5 अभियुक्त अब तक फरार हैं। बजाव पक्ष के वकीलों में से एक किशोरी लाल सिंह ने कहा कि आगे पटना हाई कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ अपील दायर की जाएगी।
इसमें 18 मुद्दे FIR में थे, उसके मात्र दो ही फेस कर रहे थे, जिसमें एक आदमी भाग है, एक आदमी का कल फैसला है और बाकी जो नेम नहीं थे उन्हीं का आज फैसला हुआ है। कुछ लोगों का ऐसा भी है कि सिंगल साक्ष के आधार पर भी कुछ लोगों को सजा हुई। आगे ऑनरेबल हाईकोर्ट में इसका अपील दायर किया जाएगा और कुछ का केस ऐसा लगता है कि वो लोग ऑनरेबल हाईकोर्ट से हो सकता है कि बरी भी हो सकता है।
आज बेकसूर करार दिए 23 लोगों में से एक ढेबरी गांव के रामविलास यादव भी हैं। उन्होंने अदालत के फैसले के बाद कहा,
का अथी करेंगे हजूर, हम लोग तो निर्दोष आदमी हैं, हम लोग को पुलिस पकड़ के भेज दिए थे। वो तो सर पहले से आज तक सोचे में कि भगवान क्या करते हैं नहीं करते हैं, तो जय साहब के मुंह से पाक है। हमारे गांव के तो कुछ कुछ निकल गए थे, 2 ठो साइड फंस गए।
इस मामले में आरोप का गठन 15 मई 2002 को हुआ था। सुनवाई के दौरान 31 लोगों की गवाही हुई, जिनमें 5 सरकारी गवाह शामिल हैं। सिनारी नरसंहार से ही जुड़े एक दूसरे मामले में जहानाबाद व्यवहार न्यायालय कल फैसला सुनाएगी। इस मामले में दुखन कहार ही एकमात्र अभियुक्त हैं। मनीष शांडिल्य, BBC जहानाबाद।
पंजाब में जहां क्रिकेटर से राजनेता बने नवजोत सिंह सिद्धू के राज्य में आम आदमी पार्टी के प्रभारी से बातचीत होने की चर्चाएं गर्म हैं, वहीं ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि कांग्रेस सिद्धू को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही है। हालांकि इससे पहले राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सिद्धू पर कई आरोप लगाए, लेकिन अब ये दिखने लगा है कि कांग्रेस को सिद्धू पसंद आने लगे हैं। आपको याद ही होगा कि हाल ही में नवजोत सिंह सिद्धू ने आवाज़ पंजाब मोर्चा के गठन की घोषणा की थी। आखिर पंजाब में चल क्या रहा है, यही जानने की कोशिश की है पंजाब से रविंदर सिंह रॉबिन ने इस रिपोर्ट में।
पंजाब की राजनीति में अपने आप को पुनः सक्रिय करने और अपना स्थान बनाने की कोशिश में लगे नवजोत सिंह सिद्धू एक बार फिर से चर्चा में हैं। सिद्धू पिछले 3 महीनों से एक डाल से दूसरी डाल पर बैठकर अपनी स्थिति का आंकलन करने में लगे हुए हैं। पहले चर्चा थी कि वे आम आदमी पार्टी में चले जाएंगे, लेकिन सिद्धू ने अपना ही फ्रंट बना डाला और बाद में उसे पार्टी का रूप देने से मना कर दिया। अब जानकारी यह भी मिल रही है कि सिद्धू अपनी राजनीति की गाड़ी आम आदमी पार्टी की पटड़ी पर फिर से चढ़ाना चाहते हैं। जानकारों की माने तो सिद्धू आज आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं से मिले हैं और दोनों तरफ सहमति का माहौल भी बन रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता इस मीटिंग के बारे में कुछ भी खुलासा करने से संयम बरत रहे हैं। अब समाचार है कि वे कांग्रेस में एक जिम्मेवारी के साथ जा सकते हैं। कांग्रेस के प्रधान कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पहले तो सिद्धू के खिलाफ बयान दिए थे, पर अब कांग्रेस को सिद्धू अच्छा लगने लग गए हैं। कांग्रेस के सीनियर नेता और पंजाब के प्रवक्ता सुखजिंदर राज सिंह लाली कहते हैं,
यहाँ तक नवजोत सिंह सिद्धू का सवाल है, 2-3 बातें बहुत क्लियर हैं। पहली बात है कि वो बहुत ही ईमानदार, चाहे आज तक वो कांग्रेस में नहीं है, लेकिन हम उनके प्रतिद्वंदी भी कह सकते हैं कि हम लोग रहे हैं उनके अलग पार्टी में, लेकिन एक बात हर अमृतसर में या पंजाब में या इवन इंडिया में एक बात हर आदमी को क्लियर है कि वो एक ऐसे ऑनर्स।
भाजपा का मानना है कि सिद्धू ने अपने आप को पंजाब से दूर कर लिया था और अब अपने मतलब निकालने के लिए वे कोई अन्य पार्टी तलाश रहे हैं, लेकिन इसका अकाली दल और भाजपा को कोई नुकसान नहीं है। हमसे बात करते हुए भाजपा के जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग कहते हैं,
नवजोत सिंह सिद्धू इस समय हाशिए पर हैं, वो आम आदमी पार्टी में जाएं, नई पार्टी बनाएं या कांग्रेस में जाएं, उनका कोई असर होने वाला नहीं है और उल्टा जहां जाएंगे वहां लड़ाई झगड़ा ही डालेंगे। और अब तो कांग्रेस में नया झगड़ा शुरू हो गया है कि प्रताप सिंह बाजवा आगे आए, सिद्धू आगे आए, मनप्रीत बादल आगे आए या तीनों छोड़ के कैप्टन अमरिंदर सिंह आगे आए।
और अकाली दल के प्रधान और पंजाब के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुखबीर सिंह बादल ने तो सिद्धू को ह्यूमन बॉम्ब कह डाला। उनका कहना था,
एक्चुअली ना लोगों नु नहीं एक दूजे नु गिफ्ट दे रहे हैं, एक दूजे नु ठोकना चाहते हैं, ते सिद्धू ह्यूमन बॉम्ब है, जाके तो फटना ही होने।
सिद्धू कहानी का आज एक नया मोड़ आया। जब सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ 2002 में हुए चुनाव प्रचार में 25 लाख से ज्यादा रुपए खर्च करने के मामले में मुकदमा चलाने का फैसला दे दिया है। नवजोत कौर सिद्धू इसे 2009 में हारे हुए प्रत्याशी ओपी सोनी की फ्रस्ट्रेशन कहते हैं। और नवजोत सिंह सिद्धू कहाँ जाएंगे इसके बारे में उनकी पत्नी नवजोत कौर सिद्धू कहती है,
ये 2009 की बात है और तब इलेक्शन हुई थी और तब जो बंदा हारता है तो उसको फ्रस्ट्रेशन होती है कि मैं हार गया हूं, तो कोई ना कोई रीजन ढूंढता है। तो 2009 और 2017 में बहुत फर्क है, सो ऐसा कुछ मन में ऐसी कोई बात नहीं है।
2017 के चुनाव में अकाली दल भाजपा सत्ता में तीसरी बार बने रहने के लिए अपनी ताकत लगा रही है और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अपनी जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। अब इस चुनावी दंगल में गुरु किसे अपना गुरु बनाते हैं ये आने वाला समय बताएगा।
किस पार्टी का रुख करेंगे नवजोत सिंह सिद्धू बनी हुई है एक पहेली। ये थे रविंदर सिंह रॉबिन।
दिन भर शॉर्टवेव 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 7,565, 9,460, 9,510 और 11,795 किलोहर्ट्ज़ व मीडियम वेव 1,413 किलोहर्ट्ज़ पर।
आप सुन रहे हैं दिन भर सुशीला सिंह के साथ। और अब एक अंतर्राष्ट्रीय विषय। अमेरिका में बिना कागजात के प्रवेश करने वाला प्रवासियों का मुद्दा काफी विवादास्पद रहा है। रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के मेक्सिको वासियों के खिलाफ बयान भी चर्चा में रहे हैं। साथ ही ट्रंप का मेक्सिको अमेरिका की सरहद पर दीवार बनाने का विचार भी विवादास्पद हुआ है, लेकिन इस सरहद पर लोहे की बाड़ और दीवार पहले ही मौजूद है। बीबीसी संवाददाता ब्रजेश उपाध्याय इसी सरहद पर गए और जानने की कोशिश की कि इस सरहद के रास्ते अमेरिका में प्रवेश करना कितनी बड़ी समस्या है।
ये है फ्रेंडशिप पार्क। अमेरिका और मेक्सिको की सीमा पर लोहे की जेल नुमा दीवारों के बीच एक छोटा सा कोना। हर वीकेंड कई लैटिनो परिवार इन सलाखों के पीछे खड़े अपनों के परछाई नुमा चेहरे देखने यहाँ आते हैं। जेनेट हर हफ्ते अपनी माँ से मिलने आती हैं और बस उनकी उंगलियों को छू सकती हैं। कहती हैं दीवार का ये हिस्सा अब जैसे अपना सा लगने लगा है।
मेरे देश में अवसरों की कमी है। मैं अपने बच्चों को बताती हूँ कि ये मुश्किल है, लेकिन मैं ये सब सिर्फ उनके लिए ही कर रही हूँ।
थोड़े आंसू, थोड़ी हंसी, लेकिन जालियों के पार से हमेशा यही सवाल कि तुम्हारे कागज कब बनेंगे। दस्तावेजों के बगैर जेनेट उस पार जाएंगी तो लौट नहीं पाएंगी। शायद ही कोई दिन गुजरता है जब कोई इन दीवारों को पार करने की कोशिश नहीं करता हो। कई जगह एक मिनट के अंदर जालियाँ काट दी जाती हैं, लेकिन बॉर्डर पेट्रोल एजेंट जेम्स नेल्सन का कहना है कि दीवार की वजह से घुसपैठ में काफी कमी आई है।
लोकल कम्युनिटीज हैव ग्रोन एंड फ्लरिश्ड।
अब स्थानीय लोगों में संपन्नता बढ़ी है, नए घर बन रहे हैं, उन्हें 5-5 लाख डॉलर तक बेचा जा रहा है।
कैलिफोर्निया से टेक्सास तक फैली सरहद पर 20,000 पेट्रोल एजेंट्स और ड्रोन्स के जरिए पैनी नजर रखी जाती है। सरहद पार करने की कोशिश में हजारों की मौत हो चुकी है। पहले से ही लोहे की दीवारें दूर दूर तक फैली हुई हैं, लेकिन ट्रंप इन सबसे बड़ी और ठोस दीवार बनाने के वादे पर कामयाब हो रहे हैं। लेकिन जब गरीबी और एक बेहतर जिंदगी के बीच मिनटों पार एक सरहद हो तो कोई कैसे रुके।
मैं इस समय में मेक्सिको के अंदर खड़ा हूँ और अपने पासपोर्ट के साथ इस दीवार को पार करने में मुझे मुश्किल से 20 मिनट का वक्त लगा, और वो भी पैदल। लेकिन इस दीवार के दोनों तरफ लाखों लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने अपनों को बरसों से देखा तक नहीं है। बहुतों का कहना है कि ये दीवार लिबर्टी और फ्रीडम जैसे उन उसूलों के खिलाफ है जिनके बुनियाद पर अमेरिका को बनाया गया था।
ओबामा प्रशासन के दौरान 25 लाख लोगों को सरहद पार डिपोर्ट किया गया है। ट्रंप 1 करोड़ से ज्यादा को डिपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। तिवाना में रहने वाले हिसूस का कहना है कि नुकसान अमेरिका का भी होगा।
लोग बेहतर जिंदगी के लिए अमेरिका जाना चाहते हैं और ये लोग वही काम करते हैं जो खुद अमेरिकी नहीं करना चाहते। ट्रंप ने अगर इन्हें वापस भेजा तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा।
दुनिया के कई कोनों से आए हुए लोग तिवाना में इंतजार कर रहे होते हैं, कभी कोहरे का, कभी अंधेरे का, कि मौका पाते ही दूसरी तरफ छलांग लगा सकें। कई जानकारों का कहना है कि जब तक मेक्सिको और अमेरिका की अर्थव्यवस्था में तालमेल नहीं बैठता, कोई दीवार इन कोशिशों को नहीं रोक पाएगी। ब्रजेश उपाध्याय, बीबीसी न्यूज, तिवाना, मेक्सिको।
बीबीसी हिंदी रेडियो पर बुधवार को दुनिया जहां
अंतर्राष्ट्रीय खबरों के पीछे का सच,
शुक्रवार को इतिहास की परतें खोलती विवेचना,
और शनिवार को आपकी आवाज इंडिया बोल।
और अब समय है आपकी चिट्ठियों का, जो लेकर आए हैं रेहान फजल और संदीप सोनी।
आपकी राय, आपकी राय के साथ आज मैं हूं संदीप सोनी और मेरे साथ हैं
रेहान फजल। आपका अभिवादन, सभी श्रोताओं का बहुत दिनों बाद आपसे इस फोरम पर मुलाकात हो रही है।
और तमाम चिट्ठियां हैं मेरे हाथ में, पीले रंग के पोस्टकार्ड हैं और ईमेल के जरिए आए तमाम खत हैं। राहुल कुमार भागलपुर ईमेल के जरिए लिखा है इन्होंने पत्र हमें और सीधे आपको संबोधित किया है। रेहान फजल सर को विवेचना सप्ताह में दो बार प्रस्तुत करना चाहिए, मंगलवार और शुक्रवार को।
राहुल कुमार, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जिस ढंग से आपने लिखा है उसे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको ये प्रोग्राम बहुत पसंद है। लेकिन राहुल, आप ये मानेंगे कि किसी भी चीज़ की अति बहुत बुरी होती है, और किसी भी अच्छी चीज़ के लिए मेरा मानना है कि आपको इंतज़ार करना चाहिए, और अगर वो चीज़ आपको रोज़ परोस दी जाए बगैर किसी गैप के, तो कुछ दिनों बाद आप कहेंगे कि साहब कुछ ज़्यादा हो गया।
और इसी से जुड़ा हुआ एक और पत्र है, ईमेल के ज़रिए मिला है। एहसान असगर हैं मलकापुर डिस्ट्रिक्ट बुलढाणा महाराष्ट्र से। ये लिखते हैं कि इस बार ना तो विवेचना और ना ही इंडिया बोल कुछ विशेष लगे, इन्हें मज़ा नहीं आया, नमक कम लगा कुछ।
ये बताता है कि कितनी वैरायटी है, कितना दृष्टिकोण में कितना फ़र्क है हमारे श्रोताओं के। अभी तारीफ हुई और अभी बिल्कुल अगला ही पत्र उसमें आलोचना। और क्या नाम आपने बताया?
एहसान असगर।
एहसान असगर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया पत्र लिखने के लिए। और जहाँ तक आलोचना की बात कि आपने एक ऐसे व्यक्ति पर विवेचना की जो मशहूर नहीं है, तो साहब यहाँ हम आपसे सहमत नहीं हैं। भूपेश गुप्त के बारे में अगर बात की जाए तो भारत के 5 सबसे महानतम सांसदों में उनकी गिनती होती है। अगर आप 5 सांसदों के नाम लें तो उसमें भूपेश गुप्त का नाम ज़रूर लिया जाएगा। ये अलग बात है कि आज की पीढ़ी के लोग उनके बारे में उतना नहीं जानते, और इसीलिए ज़रूरत है लोगों को बताने की उनके बारे में कि इतने सीजन्ड सांसद हुआ करते थे वो। और जहाँ तक इंडिया बोल की बात है, तो कभी कभी होता है कि हम बहुत से श्रोताओं को शामिल नहीं कर पाते हैं और एक्सपर्ट्स के व्यू ज़्यादा लिए जाते हैं, तो कभी क्लिक करता है और कभी नहीं क्लिक करता है।
अगला पत्र लिया जाए। आफताब अंसारी हैं, ईमेल के ज़रिए भेजा है हमें ये खत। लिखते हैं 23 अक्टूबर और 24 अक्टूबर के दिन भर और नमस्कार भारत का ख़ास तौर पर जिक्र किया है, और लिखा है कि ये दोनों दिन के कार्यक्रम आपने पूरी तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति को समर्पित कर दिए थे।
इनको रास नहीं आया,
इनको रास नहीं आया कि क्यों उत्तर प्रदेश को इतना महत्व दिया जा रहा है।
भाई जब भी कोई बड़ी घटना होती है, आप पूरे सारे प्रोग्राम उठा के देखें, तो ऐसा नहीं है कि जिस दिन बड़ा दिन होता है तो हम लोग उस पूरे विषय पर कभी कभी पूरा प्रोग्राम दे देते हैं। अगर आपको याद हो, नेल्सन मंडेला का जिस दिन निधन हुआ था, पूरा का पूरा कार्यक्रम दिन भर हमने उन पर किया था। और आप याद करें, पिछले दिनों मोहम्मद अली, बहुत मशहूर बॉक्सर, उनका निधन हुआ था, उनको भी एक तरह से पूरा प्रोग्राम समर्पित किया गया था। तो यूपी, उत्तर प्रदेश आजकल केंद्र बिंदु में है, और उत्तर प्रदेश को हम सिर्फ एक रिपोर्ट और एक साक्षात्कार सुनवा कर छोड़ दें तो लोग कहेंगे ज्यादती है, और उत्तर प्रदेश भारत का बहुत महत्वपूर्ण राज्य है, और वहाँ जो इस समय सरगर्मियाँ चल रही हैं, जाहिर है हमारे श्रोताओं की रुचि होगी उनके बारे में विस्तार से जानने के लिए।
और देखिए, फारूक अब्दुल्ला फिजा हैं लक्ष्मीपुर रक्सौल पूर्वी चंपारण से, ये बिल्कुल उलट लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि साहब बीबीसी की सबसे बड़ी पहचान उसकी निष्पक्षता है, और इन दिनों उत्तर प्रदेश से समीर आत्मज मिश्र की विशेष प्रस्तुति बहुत पसंद आ रही है, चुनाव से जुड़ी तमाम खबरें खूब सुन रहे हैं।
बिल्कुल, मैं आपसे सहमत हूं पूरी तरह से। समीर आत्मज मिश्र ने बहुत अच्छा काम किया है। पिछले 10-15 दिनों से जो कुछ भी हो रहा है बहुत बारीकी से और बहुत विस्तार से कवर कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे दूसरे साथी भी हैं, वात्सल्य राय, वो भी बहुत सारे इंटरव्यूज़, बहुत सारी रिपोर्टें जुटा रहे हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई, और हमें उम्मीद है पसंद आ रही होंगी।
चलते चलते आखिरी पत्र ले रहे हैं, पीले रंग का पोस्ट कार्ड है, आया है पश्चिमी दीक्षिताना कोला गोकुणनाथ लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश से। लिखते हैं कि साहब मैं बीबीसी का 36 वर्ष पुराना श्रोता हूं, पत्राचार की गति अब पहले जैसी नहीं रही जो 80-90 के दशक में थी, लेकिन 19 अक्टूबर 2016 को दुनिया जहान में थाईलैंड के दिवंगत राजा के बारे में सुना तो इनका मन हुआ कि पत्र लिखा जाए, इन्हें कार्यक्रम पसंद आया।
दुनिया जहान बीबीसी के बहुत अच्छे कार्यक्रमों में से एक है और उन पर बहुत मेहनत करते हैं निखिल रंजन और मोहनलाल शर्मा। इस बार विषय था थाईलैंड, थाईलैंड चर्चा में था पिछले दिनों। आपको कार्यक्रम पसंद आया, हमें भी बहुत खुशी हुई और आपके जो उद्गार हैं हम इस कार्यक्रम के संचालक मोहनलाल शर्मा तक जरूर पहुँचा देंगे। और अब
चलते चलते पता बता देते हैं, बीबीसी हिंदी सेवा पोस्ट बॉक्स 3035 नई दिल्ली 110003।
नमस्कार।
आपकी चिट्ठियां लेकर आए थे रेहान फजल और संदीप सोनी। और अब समय है खेल समाचारों का। खेल समाचार जानने के लिए रुक करते हैं आदेश कुमार गुप्त का। आदेश जी, बैडमिंटन में पीवी सिंधु का चीन की खिलाड़ी से मुकाबला है आज, वहीं इसके अलावा पाकिस्तान की टीम जो है एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी के सेमीफाइनल में पहुंच गई है, तो सबसे पहले किस खबर को लें?
जी सुशीला, सबसे पहले जिक्र करते हैं बैडमिंटन का। फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज छठी वरीयता हासिल भारत की पीवी सिंधु महिला एकल वर्ग के दूसरे दौर में चीन की ही बिंग जियाओ का सामना करेंगी। इससे पहले सिंधु ने कल कड़े संघर्ष के बाद हांगकांग की यिप पू यिन को 21-9, 29-27 से हराया था। चीन की बिंग जियाओ इस साल जापान ओपन और स्विस ओपन का खिताब जीत चुकी हैं। दूसरी तरफ भारत की पीवी सिंधु ने इसी साल अपने बैडमिंटन करियर की सबसे बड़ी जीत हासिल करते हुए रियो ओलंपिक में रजत पदक जीता। इसके अलावा उन्होंने इसी साल मलेशिया मास्टर्स ग्रांड प्री गोल्ड टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता। आज ही पुरुष एकल वर्ग में भारत के HS प्रण 5वीं वरीयता हासिल चीन ताइपे के चौ तियनचिन का सामना करेंगे। चेन इसी साल चीन ताइपेई ओपन ग्रां प्री गोल्ड बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम कर चुके हैं। दूसरी तरफ HS प्रणय ने भी इस साल स्विस ओपन का खिताब अपने नाम किया है। तो जाहिर सी बात है कि दोनों ही खिलाड़ी लगभग बराबरी के हैं। अब देखना यह है कि प्रणय किस तरह से अपने विरोधी की चुनौती का सामना कर पाते हैं। वहीं पाकिस्तान ने मलेशिया में खेली जा रही एशियन पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी चैंपियनशिप में आज चीन को 4-0 से हराया और इस जीत के साथ ही उसने सेमीफाइनल में भी अपनी जगह पक्की कर ली है। इससे पहले पाकिस्तान भारत से 3-2 से हारा, लेकिन उसने दक्षिण कोरिया को 1-0 से और जापान को 4-3 से हराया। वैसे पाकिस्तान मलेशिया से भी 4-2 से हारा था। पाकिस्तान के लिए अब्दुल खान ने 2, शान अली और मोहम्मद इरफान जूनियर ने 1-1 गोल किया। इसके अलावा आज ही दक्षिण कोरिया और मलेशिया भी आमने सामने थे, जहां दक्षिण कोरिया ने खेल के 37वें मिनट में जुनवू जियोंग के गोल की मदद से 1-0 की बढ़त बनाई, लेकिन मैच समाप्त होने से ठीक 5 मिनट पहले मलेशिया को पेनल्टी कॉर्नर मिला, जिसे रहीम राजी ने गोल में बदलने में कोई गलती नहीं की और स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया। और इसके बाद फिर एक काउंटर अटैक किया कोरिया ने, लेकिन वहां मलेशियाई गोलकीपर ने शानदार बचाव किया और इसके बाद एक पेनल्टी कॉर्नर मलेशिया को मिला, लेकिन मलेशिया के खिलाड़ी इसे गोल में नहीं बदल पाए और अंततः 1-1 के स्कोर के साथ ही मैच समाप्त हुआ। अब अगर सेमीफाइनल मुकाबलों की बात की जाए तो वो पूरी तरह से तय हो गए हैं, जहाँ पाकिस्तान का सामना मलेशिया से होगा और भारत का सामना कोरिया से होगा।
तो भारत से भिड़ेगा कोरिया सेमीफाइनल्स में। बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए आदेश कुमार गुप्त जी। और अब कार्यक्रम का अंत करने से पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार। बीबीसी समाचार। रक्षा मामलों से संबंधित कथित दस्तावेजों के साथ दिल्ली से हिरासत में लिए गए पाकिस्तान उच्चायोग के एक कर्मचारी को भारत सरकार ने 48 घंटे के अंदर भारत से चले जाने का आदेश दिया है। सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर व्यवसाय में घाटे के चलते 9% यानी करीब 300 कर्मचारियों की छटनी करने जा रही है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि गंभीर सूखे के चलते दक्षिणी मेडागास्कर में करीब 15 लाख लोग भुखमरी का सामना कर रहे हैं। बेल्जियम का कहना है कि वो कनाडा के साथ मुक्त व्यापार समझौते के हल तक पहुंच गए हैं। इस समझौते में 7 साल लगे और बेल्जियम को छोड़कर बाकी सभी यूरोपीय यूनियन के देशों ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। अमरीकी सेना का कहना है कि उत्तरी इराक में चरमपंथी गुट IS के खिलाफ चल रही अमरीका की कार्रवाई में करीब 800 चरमपंथी मारे गए हैं। बीबीसी समाचार सुना रही थी तृप्ति श्रीवास्तव। इसी के साथ दिन भर में बस इतना ही। आपसे 9:30 बजे घटना चक्र में फिर होगी मुलाकात। तब तक दीजिए इजाजत।